के श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। अनेक बार आपकी सेवा में पहले भी निवेदन किया जा चुका है। माला साधक जी में छोटी हो बड़ी हो भूमि को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। मानो आपको माला की कदर नहीं की क्या चीज है। मामूली धागे पर कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ हो तो धागा तैयार करवा के आप उससे बच्चे के गले में डालते हो। मामूली मंत्र, आपके पास तो महामंत्र है। आप इस महामंत्र को माला पर जपते हो तो ये माला मंत्रित तो हो जाती है। ये अब साधारण धागा नहीं रहता। लोग इसे गले में डालते हैं, आंखों पर लगाते हैं, मस्तक में लगाते हैं, जेब में रखते हैं। भूमि पर यदि ये माला स्पर्श हो गई तो सारा का सारा प्रभाव भूमि खींच लेती है। ये धागा ही रह जाता है, ना आपको लाभ होता है और उससे किसी दूसरे को भी लाभ नहीं हो पाएगा। मेरी विनती स्वीकार कीजिएगा। न जाने क्यों कुछ लोग सुनते नहीं हैं इस बात को, उन्हीं का नुकसान है। माला कभी भी छोटी हो बड़ी हो भूमि को स्पर्श न करे जहां पर पांव लगते हो। दूसरा निवेदन, दिव्य सज्जनों, जहां अधिष्ठान जी स्थापित होते हैं उसे ऐसा मानिएगा कि ये संसार के सबसे बड़े व्यक्ति का स्थान है, घर है, परमात्मा का घर है। आपने उन्हें एक कोना दिया हुआ है, स्टोर में जगह दी हुई है, सीढ़ी के नीचे जगह दी हुई है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई हमारी तरह कुड़कुड़ करने वाले इंसान नहीं है। आपको तो उन्होंने बहुत बड़ी कोठी दी है, लेकिन आपने उन्हें सीढ़ी के नीचे यदि जगह दी है, स्टोर में जगह दी है, या अपने बेडरूम में एक कोना दिया है, या उन्हें अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, तो वह उफ नहीं करते। इसलिए वह परमात्मा है, इसलिए वह इतना तो कर्तव्य हम सबका बनता है ना, उस स्थान को उनके अनुरूप पवित्र बना के रखिएगा, उस स्थान की पवित्रता बना के रखिएगा। यदि देवी आप उनसे परमात्मा का लाभ लेना चाहते हो तो ऐसा करना होगा, यदि नहीं तो कागज। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। तब अधिष्ठान जी कुछ भी हो वे आपको कागज जैसा ही लाभ देंगे। क्यों? आप उन्हें परमात्मा मानते ही नहीं, उन्हें परमात्मा जैसी इज्जत देते ही नहीं, उनके प्रति जैसी परमात्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए नहीं। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है एटिकेट्स, शिष्टाचार। बेटा खांसी करो तो आगे कपड़ा रखना, छींक आने लगे तो आगे कपड़ा रखना और सॉरी कहना। क्या कभी किसी ने अधिष्ठान जी के सामने बैठे हुए ऐसे करते भी किया है? मानो आपने कभी माना ही नहीं कि ये जीवन है, ये चेतन है, ये चैतन्य है। जो ऐसा मानेगा वह इन सब बातों का ध्यान रखेगा। इनके सामने बैठ के कोई संसारी बात नहीं करनी, टांगे पसार के नहीं बैठना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। छींक आए तो जैसे साधारण व्यक्ति दूसरे को कहता है सॉरी, परमेश्वर को भी कहा कीजिएगा, तो उन्हें लगेगा ओह ये तो मुझे चैतन्य मानता है, ये तो मुझे जीवंत मानता है कि मैं इसमें विराजमान हूं। तो आपको फिर लाभ परमात्मा जैसा मिलेगा। है तो दिव्य सज्जनों, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। परमात्मा इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आपको परखता है, व्हाट आर यू, आप क्या हो, मुझे क्या समझते हो आप, फिर उसी के अनुसार देवी लाभ परमात्मा देता है। वह जो महानतम लाभ दे सकता है यदि कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण वंचित रह जाए बेटा, तो कितना अभागा होगा वह। घर में परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन आप लाभ उनसे नहीं ले पाते, आपने उनकी कदर नहीं की। अब सच मानो देवियों, सच स्वामी जी महाराज राम नाम देने में संकोच नहीं करते। बहुत बांटा है उन्होंने, बांट रहे हैं, खूब बांट रहे हैं, नहीं देखते ये अधिकारी है, ये पात्र है, कुपात्र है, दे देते हैं। कहते हैं मुझे राम नाम पर, अपने राम नाम पर इतना विश्वास है, बंजर से बंजर भूमि में भी ये जाके पड़ेगा, एक ना एक दिन इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में ये अंकुरित होके तो एक ना एक दिन विशाल पेड़ बन के रहेगा। अतएव स्वामी जी महाराज देखिएगा, पिछला जीवन देखिएगा, आपका जीवन देखिएगा, तनिक भी वे सोचते नहीं है, नामदान दे देते हैं, लेकिन अधिष्ठान जी सबको नहीं देते। अधिष्ठान जी देने में बहुत संकोची हैं स्वामी जी महाराज। मैंने अपनी सारी तपस्या का जो पुरस्कार, जो फल मुझे मिला, वह तो मैं बांट रहा हूं, लेकिन ये तपस्या करके जो मुझे अधिष्ठान जी की प्राप्ति हुई है, इसे बांटने में मैं बहुत कंजूस हूं, बहुत संकोची हूं, मैं हर एक को नहीं देता। जिस घर में इनका निरादर होता है, ऐसे घर में मैं दे के पश्चाताप करता हूं, पछताता हूं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से कैसी गलती हो गई, इन्होंने कदर नहीं डाली। तो ये तो निवेदन अभी ऐसे ही याद आए तो आपकी सेवा में अर्ज कर दिए हैं, मेहरबानी करके इनका अनुपालन कीजिएगा। श्री गीता जी के 9वें अध्याय में से 30वें एवं 31वें श्लोक की चर्चा चल रही है। कल से दैनिक सत्संग में भी 9वें अध्याय का शुभारंभ हो गया है। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। गीता जी के 18 अध्याय टोटल अंक 9, ये स्वयं ही 9 है, बहुत महत्वपूर्ण अंक अध्यात्म में, ऐसा ही ये 9वां अध्याय है। बिना प्रश्न के भगवान श्री स्वयं बता रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। सामान्यतः अर्जुन प्रश्न पूछता है तो भगवान श्री जवाब देते हैं, यहां इससे पिछले अध्याय में स्वयं ही भूमिका बना के तो स्वयं तैयारी करी हुई है। आई विल कंटिन्यू टुमारो, 9वां अध्याय कोई प्रश्न नहीं है, भगवान श्री देने के लिए उतावले हैं। अतएव ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, पढ़ा कीजिएगा। चर्चा चल रही थी, कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मेरा आराधन करता है तो वे साधु ही कहलाने योग्य है। क्यों? उसने कुकृत कुकर्म छोड़ के दृढ़ निश्चय कर लिया है कि राम भजन जैसा और कुछ भी नहीं है। मानो जो पिछला जीवन था वह जीवन जीवन नहीं था, उसे छोड़ दिया और नया जीवन परमात्मा के आराधन का, परमात्मा की भक्ति का अपना लिया। अगले श्लोक में भगवान श्री कहते हैं ऐसा साधक बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मात्र मेरी चरण शरण में आने की आवश्यकता है पिछला छोड़ के। तुलसी ने पिछला छोड़ा तो परमात्मा का मिलन हो गया, सूरदास ने अपना पिछला जीवन छोड़ा तो परमात्मा बहु पकड़ के तो उसे, लाठी पकड़ के तो उसे अपने साथ साथ ले जाते हैं। रत्नाकर ने अपना पिछला जीवन छोड़ा तो परमात्मा ने इतना वंदनीय बना दिया कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस प्रकार श्री देवी सचनों 30वां श्लोक यही कहता है, कोई अति दुराचारी भी क्यों ना हो, अति दुराचारी भी क्यों ना हो, यदि वह अनन्य भाव से एक भाव से विद अनडिवाइडेड हार्ट, अनन्य भाव से मेरा भजन परमात्मा का भजन करता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, वह साधु कहलाने योग्य है। मात्र इतना ही है, ऐसा व्यक्ति जो दुराचरण भी जारी रखता है और परमात्मा का आराधन भी जारी रखता है, परमेश्वर की महिमा देखो देवियो, परमात्मा कितना महान है, उसकी मैग्नेनिमिटी, उसकी ग्रेटनेस वर्णन नहीं की जा सकती। हम कैसे हैं, दुराचरण भी कर रहे हैं और सुबह श्री राम शरणम भी आते हैं, घर जाके थोड़ा भजन पाठ जाप इत्यादि भी कर लेते हैं, ये हमारा सबका जीवन है। हमने दुराचार अभी छोड़ा नहीं है, हमारा दुराचार जहां कहीं हमें अवसर मिलता है हम बेईमानी हेरा फेरी किए बिना रहते नहीं हैं, मानो हमारा जीवन दुराचारी भी है और यहाँ हम श्री राम शरणम भी रोज हाजिरी लगाते हैं। सबका लगभग जीवन इसी प्रकार का है। कोई विरला ऐसा है जिसने दुराचरण छोड़ के तो केवल परमात्मा की भक्ति को अपना जीवन बना लिया है, तो भगवान श्री कहते हैं मैं बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, मैं उसे बहुत उच्च बना देता, उसका मैं उत्थान कर देता। लेकिन जो दुराचारी भी है और मेरा भजन भी करता है, मैं उसे भी साधु ही कहता हूं, यह परमात्मा की ग्रेटनेस है। मैं उसे भी साधु ही कहता हूं जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला है, मार्ग पर तो वह चल रहा है लेकिन जहां कहीं उसे प्रलोभन मिलता है वहां फिसल जाता है, उठता है, एक ना एक दिन पहुंचेगा जरूर, एक ना एक दिन साधु बनेगा, एक ना एक दिन धर्मात्मा बनेगा, लेकिन देरी से। ये जिसने दुराचर छोड़ दिया है, बेईमानी हीरा फेरी कुकृत जिसने छोड़ दिए हैं, केवल राम भजन प्रेम पूर्वक करता है, अनन्य भाव से करता है, वह तो बहुत जल्दी मेरे पास पहुंचने वाला हो जाया करता है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है, वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है, वह परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी संदर्भ में साधकों भद्रतनु की चर्चा चल रही थी। भद्रतनु एक ब्राह्मण परिवार से है, युवा अवस्था हो गई, बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई, अतएव माता पिता के ब्राह्मण के संस्कार उस पर पड़ नहीं सके, सत्संग नहीं मिल सका, स्वाध्याय के सुअवसर नहीं मिल सके, कोई जीवन में मार्गदर्शक भी नहीं मिल सका, अतएव बाकी क्या रह गया, कुसंग। वह कुसंगति में पड़ गया और सारे के सारे कर्म जो ब्राह्मण को शोभा नहीं देते वे सब के सब कर्म वह युवक कर रहा है, उसने किया है, जुआ वह खेलता है, मांस वह खाता है, शराब वह पीता है, एक बहुत सुंदर वैश्य है उसके पास उसका नित्य जाना है, वैश्य अपने इस वैश्य वृत्ति से बहुत परेशान है, मानो उसके ऊपर भीतर अंदर संस्कार अच्छे हैं, अतएव वह मौका ढूंढ के तो इस ब्राह्मण पुत्र को भी ब्राह्मण युवक को भी समझाती रहती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इस वक्त उसके कुसंस्कार इतने हावी हैं कि वह वैश्य की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आज पिताश्री का श्राद्ध है, कोई श्रद्धा नहीं। एक कर्म करना था ताकि लोकलाज बनी रहे, कोई श्रद्धा पूर्वक अपने पिताश्री का श्राद्ध नहीं किया। जल्दी जल्दी ये कर्म निभा के तो फिर वैश्या के यहां पहुंच गया है। आज वैश्या ने बहुत फटकारा है, लानत है तेरे जैसे पुत्र पर। मैं यकीनन कह सकती हूं तेरा बाप यदि जिंदा होता तो ये कहता, तेरे जैसे पुत्र के बिना ही यदि मैं होता तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता। तेरे जैसा पुत्र किसी को न मिले। आज तेरे पिताश्री का श्राद्ध है और तू यहां एक वैश्य एक पापिन के घर में आ गया हुआ है। क्या जीवन है तेरा, धिक्कार है तेरे ऊपर। क्या मुंह लेके जाएगा परमात्मा के घर? क्या तुझे डर है कि नहीं? क्या तुझे इस बात का बोध है कि नहीं कि तूने कहीं जाना है? वहां जाके क्या मुंह दिखाएगा? क्या किया है जिंदगी में? क्या पापों के सिवा कुछ और तूने जिंदगी में हासिल किया है, इकट्ठा किया है? कई सारे प्रश्न वैश्य ने पूछ दिए। क्या रखा है इस हाडमास के पुतले में? रक्त मांस मल मूत्र का ये बोरा क्या तुम्हें इसमें दिखाई देता है? तू इसके प्रति इतना आसक्त है कि इसके बिना तू रह नहीं सकता। आज तेरे पिता का श्राद्ध है और तू यहां आ गया है मेरे पास। क्या तुम्हें दिखाई देता है? इतनी प्रीति इतनी आसक्ति यदि तू परमात्मा के साथ करे, उनकी चरण शरण में जाए, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं मैं एक पापिन हूं। मैं इस मार्ग पर चलने वाली नहीं हूं, मुझे इस मार्ग का बोध नहीं है, पर मैं यकीनन कह सकती हूं कि यदि इतनी ही आसक्ति जितनी मेरे साथ है, इतनी आसक्ति से तू परमात्मा की चरण शरण में जाता है तो परमात्मा तुम्हें जरूर स्वीकार कर लेगा। बस आज बात दिल को लग गई। लानत है तेरे ब्राह्मण होने पर, इतने वर्ष जिंदगी तेरी व्यतीत हो गई लेकिन तूने ब्राह्मण जैसा कोई कर्म नहीं किया। तू पापी है, पतित है, अधम है, इत्यादि इत्यादि ये बातें सोच सोच के तो पश्चाताप के आंसू अनुताप अश्रु बह रहे हैं निरंतर। आज उस वैश्य के चरणों में अपना मस्तक रख के दो बूंद आंसू उनके मस्तक पर उनके चरणों पर चढ़ा के विदा देती है, मुड़के उधर नहीं देखा। रोता रोता मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचा है। पुरानी बात है, मार्कंडेय जी के पास जाके उनके चरणों में प्रणाम किया, अपनी व्यथा सुनाई। कहावत, तेरे ऊपर परमात्मा की अपार कृपा है। संत क्या कहते हैं, किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, बेटा तेरे ऊपर परमात्मा की अपार कृपा है, ये तुम्हें पता लगेगा। शुभारंभ परमेश्वर की कृपा का हो गया है। यदि तेरे ऊपर कृपा का शुभ आरंभ न हुआ होता तो आज तेरे कदम इस प्रकार परमात्मा की ओर न मुड़ते। ये परमात्मा की कृपा का फल है, ये परमात्मा की कृपा का प्रतीक है। जा, दांत मुनि है उनकी चरण शरण में जा, उनके पास जाने से तेरा कल्याण हो जाएगा। महर्षि मार्कंडेय जी से आशीर्वाद लेके वह दांत मुनि के पास गया है, जाके अपनी सारी व्यथा सुनाई है। इतने दिन इतनी देर रोने के अतिरिक्त पश्चाताप आंसू बहाने के अतिरिक्त उसे कोई सुध बुध नहीं है। लोकलाज से वह ऊपर हो गया है, लोग मुझ रोते हुए को क्या कहेंगे, जो मेरे कल के जीवन को जानते हैं, आज मुझे इस प्रकार से परमात्मा के लिए अश्रु बहाते हुए कौन मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि मैं परमात्मा के लिए रो रहा हूं। आज मेरी इस प्रकार की हालत देख के, परमेश्वर के लिए व्यथित देख के कौन मुझ पर विश्वास करेगा। इन सब बातों की उसे परवाह नहीं है। अतएव गली है, बाजार है, कुछ भी है, उसके आंसू अजस्र बह रहे हैं। पश्चाताप के आंसू, अनुताप अश्रु उसके बहते जा रहे हैं। दांत मुनि ने योग्य पात्र जान के तो उन्हें नामदान दिया है, राम राम जपना शुरू कर दिया है। पुराना जीवन बिल्कुल भूल जा, तेरा पुनर्जन्म हुआ है बस, आज से तेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यदि तू सदाचारी जीवन बिताएगा, भक्ति में जीवन बिताएगा, तो तुझे परमात्मा का मिलन होके रहेगा। आशीर्वाद पाके, नाम दान लेके, तो देवियों सज्जनों, भद्रतनु साधना रत हो गया है, उसे कोई सुदबुद्ध नहीं है। परमेश्वर की कृपा, पुराना जीवन सब कुछ भूल गया है, एक कृपा काम कर रही है, कृपा उसे उठा रही है, कृपा उसका उत्थान कर रही है, ईश्वर उन्मुख हुए को और उठा रही है, डिस्टेंस दूरी देरी खत्म कर रही है। आज अधिक बातें न कहते दिव्य सज्जनों, परमेश्वर की कृपा हो गई, भगवान श्री प्रकट हो गए। विश्वास नहीं हो रहा, मुझ जैसी पापी पतित अधम के सामने परमेश्वर साकार रूप में प्रकट हो गए हैं, विश्वास नहीं हो रहा। वह रोता जा रहा है, भगवान ने बहुत ढाढ़स बंधाया, कंधे पर हाथ रखा, सिर पर हाथ फेरा, मैं हूं ना, क्यों रो रहा है, क्यों चिंता कर रहा है, देख मेरे दर्शन कर, निहाल हो, क्या मांगना चाहता है, क्या पाना चाहता है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं है, बस चरणों में मस्तक रखा हुआ है, उठा नहीं रहा, मुक्ति मांगनी है, कुछ मांगना है, उसे कोई बोध नहीं है, बस रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। भगवान श्री ने उठा के तो उसे अपने गले लगा के कहा, मित्र रो मत, मुझे दुखी मत कर। भगवान श्री को कहता है, प्रभु मैं किस कारण रो रहा हूं, इसलिए मैं जिंदगी में इतना कमजोर हो चुका हूं, मुझे पता नहीं, मुझे भय है कब मैं फिर गिर जाऊं, मैं इस भय के कारण रो रहा हूं। भगवान श्री कहते हैं, पुत्र मित्र, मित्र बना लिया उसे, मित्र मेरी मित्रता चंचल नहीं है, अचल है, मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अब भटकने नहीं दूंगा, देख तू मेरा मित्र है ना, मेरी तरह ठाठ बाट से सज धज के रह, मेरी तरह रह, गंदा मंदा नहीं, क्या कहेंगे लोग, ये भगवान का मित्र है और ऐसा बना फिरता है, नहीं, मेरी तरह ठाठ बाट से बिल्कुल सज धज के रह। आज नए छेल छबीला बन के भद्रतनु अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गया है। गुरु महाराज ने देखा, ऐसी वेशभूषा, ऐसा सब कुछ, ये क्या हुआ है, कहा गुरु महाराज, परमात्मा का हुक्म है, मेरे मित्र का हुक्म है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। क्या मतलब, क्या तुम्हें भगवान मिल गए हैं? हां गुरु महाराज, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है, मुझे मिल गए हैं। मैंने हजारों साल तपस्या की है, उस वक्त की बात है जब लोग हजारों साल की तपस्या करते थे, दांत मुनि कह रहा है, मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुए, मुझे उनसे मिला। भद्रतनु अपने मित्र को पुकारता है, क्या बात है, क्यों याद कर रहे हो मुझे? कहा, मित्र मेरे गुरु महाराज को दर्शन दो। नहीं, भगवान श्री कहते हैं नहीं, उन्हें अभी कई हजार वर्ष और तपस्या करनी पड़ेगी, तब मैं दर्शन दूंगा। भद्रतनु कहता है, अब तो भद्रतनु नाम लेने को मन नहीं कर रहा, परम भक्त परमात्मा का सखा कह रहा है, मित्र बनाया है ना, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे गुरु महाराज को दर्शन दो। अपनी मित्रता निभाई है, गुरु महाराज को भी दर्शन दिए, दोनों को भक्ति का आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ परम धाम की प्राप्ति। कोई बड़ा दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह साधु ही कहलाने योग्य है। मैं उसे एक ना एक दिन, बहुत देरी से नहीं, उसे साधु बना देता हूं, उसे संत बना देता हूं, उसे धर्मात्मा बना देता हूं, उसे परमधाम का, अपनी कृपा का पात्र बना देता हूं। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।